पांच लब्धि नियम से होती ही है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हमने शुरू किया था कि क्योंकि ये जो पांच लब्धि का स्वरूप जानने से पहले कर्मों की कुछ प्राथमिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है, इसलिए यहाँ हम कर्मों की बात पहले लेकर फिर पंच लब्धि का वो प्रकरण अपना चालू करेंगे। हमने कर्म की मूल प्रकृति देखी थी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी अंतरा ये घाती कर्म है और वेदनी, आयु, नाम और गोत्र ये अघाती कर्म है। ये तो मूल प्रकृति कहलाती है, आठ कर्म प्रकृति जो है जिसको द्रव्य कर्म कहते हैं, ये मूल प्रकृति है। अब हरेक की और उसके भेद जो है, भेद प्रभेद, उसको कहते हैं उत्तर प्रकृति। उसकी भी हमने चर्चा शुरू की थी। ज्ञानावरण की हमने पांच उत्तर प्रकृति देखी थी, दर्शनावरण की नौ देखी थी, मोहिनी की 28 देखी थी, अंतराय की 5 देखी थी। ये तो घाती कर्मों का हुआ, ऐसे 47 प्रकृति तो घाती कर्म की हो गई। अब अघाती कर्मों की हम देख रहे हैं, उसमें से तो वेदनीय की 2 है, साता, आयु 4 है, वो तो भी अपने पता है अपने को, गोत्र 2 है उच्च नीच, और नाम कर्म की जो है वो बहुत सारी है, तो 93 प्रकृतियां हैं। अब 93 इतनी याद रखना बहुत कठिन है, इसलिए उसमें हम पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति ऐसे दो भेद करते हैं। पिंड यानी ग्रुप वाली, जैसे गति नाम कर्म याद रखने के लिए आसान है, तो चार गतियां होती है तो उसका नाम हमें सहज याद आ जाता है। तो हमने 14 पिंड प्रकृति देखी थी, तो उसमें से गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, बंधन नाम कर्म, संघात नाम कर्म, हाँ, और संस्थान है, सहनन है, ये सारी बातें हमने 14 पिंड प्रकृति हमने देखी थी। तो अभी हम अपिंड प्रकृति देखेंगे, यानी वो अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गत्यानुपूर्वी, विहाय, गति, वो सारी हमने देखी है। अब यहाँ से जो सिंगल सिंगल है उसको हम देखेंगे, उसको कहते हैं अपिंड प्रकृति। याद रखने के लिए उसमें भी जोड़ी जोड़ी है, वो जहाँ जो है वो हम देखेंगे क्या होता है। देखो यहाँ पेज नंबर 30 पर हम आए थे कि नाम कर्म के उत्तर प्रकृति के बहुत सारे नए नाम सुनकर तुमने चिंता व्यक्त की है कि अब इन्हें याद कैसे रखेंगे। बेटियों चिंता मत करना, चिंता करने से याद होने वाले तो नहीं है, हाँ जब इन्हें पढ़ती हो तो इनका स्वरूप समझ में आता है या नहीं, बस इतना देखना है। यानी जब भविष्य में इन्हीं का नाम आएगा तो पन्ने पलट कर हम देख सकते हैं कि कौन से प्रकृति का कार्य क्या है, क्योंकि एक बार सुनने से तो याद नहीं होता है, फिर भी एक साथ अपने पास ये इन्फॉर्मेशन है अभी पूरी जानकारी, तो हम फिर दोबारा इसको देख सकते हैं। यानी अब हमने तो दोपहर में तो हमने पिंड प्रकृति देखी थी, अब हम अपिंड प्रकृति की बात कर रहे हैं। उसमें से एक साथ चार याद रख सकते हैं, वे है अगुरु लघु, उपघात, परघात और उच्छवात। अब इस एक एक का हम याद नाम स्वरूप देखते हैं। तो जो अगुरु लघु नाम कर्म है, उस कर्म के उदय में यानी ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है कि जो शरीर लोहे जैसा बहुत भारी भी नहीं होगा और वो जो आंख की रुई होती है ना वैसे एकदम हल्का भी नहीं होगा। यानी अगुरु और अलघु इन दोनों को मिलाकर ये शब्द अगुरु लघु ऐसा हो गया। देखिए जीव का अगुरु लघु गुण वो अलग है, जीव में अगुरु लघुत्व गुण है, हर एक द्रव्य में सामान्य गुण है ना, अगुरु लघु नाम का सामान्य गुण है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। ये अगुरु नाम का नाम कर्म है, तो नाम कर्म के फल में विशिष्ट शरीर की प्राप्ति होती है, तो शरीर ऐसे बनता है कि बहुत भारी भी नहीं हो और बहुत हल्का भी नहीं हो। उसको अभी यहाँ हम देखेंगे। क्या प्रश्न है? वो उसकी बात अलग है, यहाँ तो हम नाम कर्म की बात यहाँ देखेंगे। अभी उपघात नाम कर्म देखते हैं हम। तो स्वयं प्राप्त होने वाले घात को उपघात या आत्मघात कहते हैं, यानी ये भी नाम कर्म का नाम है ना, नाम कर्म है एक प्रकार का उपघात नाम कर्म। तो हमने देखा था कि नाम कर्म के उदय में विशिष्ट शरीर की प्राप्ति होती है। अब शरीर में ऐसे अवयव बनते हैं कि जो अपना ही घात करे। तो जिस कर्म के उदय में शरीर के अवयव जीव के पीड़ा का कारण बनते हैं, अपने स्वयं के लिए पीड़ा का कारण बनते हैं, उसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे बहुत बड़े सिंह, बारह सिंह का वो कहीं अटक जाता है तो सिंह के कारण वो अटक गया वहां। लंबे स्तन, बहुत बड़ा पेट आदि जीव को पीड़ा देने वाले अवयव है, और भी अलग अलग जीवों में अलग अलग जो कुछ होंगे उसकी बात ये, उसको कहते हैं उपघात नाम कर्म के उदय में वो प्राप्त होते हैं। दूसरा है परघात नाम कर्म। तो उपघात में अपना घात और परघात में पर का घात। तो परजीव के घात को परघात कहते हैं, और जिस कर्म के उदय में शरीर में दूसरे जीवों का घात करने में कारणभूत ऐसे पुद्गल निष्पन्न होते हैं उसको परघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना बिच्छू का डंक है या सांप के डाढ़ में विष है, वो काटने से दूसरे को वो विष चढ़ जाता है, मर जाता है। ये सिंह वाघ चीता है उसमें तो ये तीक्ष्ण डाढ़ वगैरह होते हैं, दांत होते हैं, तो जिसके कारण वो अन्य जीवों को मारकर भक्षण करता है। तो इसको कहते हैं कि ये जो सारे इवन वृक्षों में जो जहरीले फल है उसको भी परघात नाम कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए है, ऐसा उसका ये स्वरूप है। अब जो उच्छ्वास नाम कर्म है, यानी जिस कर्म के उदय में जीव उच्छ्वास और निश्वास, देखो उच्छ्वास के दोनों अर्थ होते हैं। मराठी में तो हम कहते हैं उच्छ्वास यानी बाहर छोड़ना, परंतु उच्छ्वास शब्द का जो संस्कृत शब्द है मूल, उच्छ्वास का अर्थ होते श्वास लेना और श्वास छोड़ना, दोनों मिलकर उच्छ्वास क्रिया होती है। तो ये तो उच्छ्वास और निश्वास रूप कार्य करने में समर्थ होता है, उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। यानी मैंने देखा था ना जो जीव अपर्याप्त अवस्था में मर जाता है उसको तो ये उच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी नहीं होता, क्योंकि एक पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही मर जाता है, उसकी उच्छ्वास पर्याप्ति तो बहुत दूर रही। छह पर्याप्ति के नाम हमने देखे थे ना, तो उसमें से ये तो उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होगा, उसी को ये श्वासोच्छ्वास रूप कार्य उसको होगा। ये हमने चार देखे, अगुरु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास। अब दो एक साथ याद रखने के लिए आसान है, आतप और उद्योत। तो जिस कर्म के उदय में शरीर में आतप अर्थात उष्णता युक्त प्रभाव उत्पन्न होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। उष्णता भी और बहुत यानी प्रकाश भी। तो सूर्य विमान के जो बादर पृथ्वी का एक जीव है, सूर्य को विमान कहा है, पृथ्वी उसे कहते कि जो लोकाकाश के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी फैली हुई है उसको कहते हैं पृथ्वी। और जो बीच बीच में जैसे हम प्लैनेट ग्रह तारे नक्षत्र देखते हैं ना छोटे छोटे ऐसे कुछ खंड पृथ्वी के खंड जो पूरे पूरे लोकाकाश के एक अंत से दूसरे अंत तक नहीं फैले हुए है उसको कहते हैं विमान। ये स्वर्गों के भी विमान कहलाते हैं, वैसे सूर्य चंद्रमा ये भी विमान कहलाते हैं। जो हमें दिखता है वो तो पृथ्वी का एक पृथ्वी है ना, पृथ्वी है वो, पृथ्वी का खंड है और वहां पृथ्वी का एक जीव होते हैं और उनमें ऐसी उष्णता युक्त प्रभा होती है। वो क्यों होती है? तो आतप नाम कर्म के उदय से होती है। वैसे भी उद्योत नाम कर्म का कार्य क्या है कि उस कर्म के उदय में शरीर में उद्योत यानी उष्णता रहित प्रभाव उत्पन्न होती है, उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। अब ये चंद्र बिंब के पृथ्वी का एक जीव में होते हैं, ये तो पंचेंद्रिय जीवन तक के भी पाए जाते हैं, यानी एकेंद्रियों में तो अभी हमने देखा चंद्र बिंब की जो पृथ्वी का एक जीव है उसमें भी होते हैं, बादल पृथ्वी का एक, बादल जल का एक और ये वनस्पति का एक जो है, प्रत्येक वनस्पति का एक कोई ऐसे जीव है कि उन्होंने भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। जुगनू तो हमें पता है, ऐसी मछलियां भी होती कि बहुत चमकती है रात में, वो फॉस्फरस युक्त ऐसी होती है ना कोई फॉस्फरस मछलियां, तो ये तीरियंच पंचेंद्रिय तीरियंचों में भी ये उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। परंतु आतप नाम कर्म मात्र पृथ्वी का ही, वो भी बादर पृथ्वी का ही, और वो भी पर्याप्त में, तो ये दो हो गए। तुम पूछोगे कि अग्नि का एक जीव में आतप नाम कर्म का उदय होता होगा क्योंकि अग्नि में उष्णता भी है और प्रकाश भी है, हमें भी ऐसा प्रश्न उठता है ना। तो अग्नि का एक जीव में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। अब उनमें जो उष्णता पाई जाती है वहां स्पर्श नाम कर्म है, उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उनका उदय होता है, उसको तेज कहते हैं परंतु उसको ये आतप नहीं कहते। यानी सूर्य बिंबों में जो पृथ्वी कायिक है उसमें सर्वांग उष्णता रूप प्रभा है उसको आतप कहते हैं, और चंद्र बिंब में जो उष्णता रहित प्रभा है उसको उद्योत कहते हैं। ये जो आतप और उद्योत प्रकृतियां हैं ये प्रशस्त प्रकृतियां, ये वो प्रकरण भी अपना आएगा आगे, शुभ प्रकृतियां कहलाती है, वो अग्नि कायिकों में नहीं पाई जाती। और सूक्ष्म जीवों में भी ये नहीं पाया जाता। सूक्ष्म जीव है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है, अपर्याप्त जीव है, उनमें ये नहीं होता। और आतप नाम कर्म जैसे उद्योत पंचेंद्रियों तक होता है वैसे आतप नहीं होता, यानी आतप नाम कर्म ना अग्नि वायु जल वनस्पति किसी में नहीं होगा, जो इंद्रियादि किसी में नहीं पाया जाएगा। उद्योग की जो विभिन्न बात की थी पंचेंद्रियों तक के पाया जाता है। अब तो थोड़ी प्रकृति रहेगी ना, अभी हमने अग्र लघु उपघात परघात उच्छ्वास देखा, आतप उद्योग देखा, अब आगे की देखते हैं। आगे तो कुछ ग्रुप्स है तो याद रखने में आसान है, जोड़ी जोड़ी में याद रखेंगे, जैसे त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त पर्याप्त, प्रत्येक और साधारण, यानी ये जो चार जोड़ी है वो एक साथ याद रखना, तो आठ एकदम अपन याद रख सकते हैं। तो इसके अभी हर एक का हम अर्थ देखते हैं। ये सब नाम कर्म की बात चल रही है, उसके उदय में वैसी वैसी पर्याय जीव को प्राप्त होती है, वैसे वैसे शरीर की रचना होती है। अब जो त्रस नाम कर्म है, ये जो हमने जोड़ी देखी ना, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त पर्याप्त और प्रत्येक साधारण, उसमें से यथा योग्य कोई भी एक का उदय होगा। जैसे त्रस का होगा तो त्रस में तो सूक्ष्म नहीं होते तो बादर का होगा उसके साथ, परंतु त्रसों में पर्याप्त भी हो सकते हैं अपर्याप्त भी हो सकते हैं, फिर प्रत्येक ही होगी त्रसों में। ऐसे जो यथा योग्य है, एक इंद्रियों में तो दोनों ही प्रकार के जीव होंगे, तो जहां जो जोड़ी एप्लीकेबल है वैसे नाम कर्म का उदय होता है। अब ये जो त्रस नाम कर्म है वो द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं, एक इंद्रियों को स्थावर कहते हैं, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी और संगी पंचेंद्रिय जो है उनको कहते हैं त्रस। तो अरिहंत भगवान को क्या कहेंगे हम? ये आवाज नहीं उमड़ती ना त्रस कहने के लिए। ऐसा संकोच होता है कि अरिहंत भगवान को त्रस कैसे कहें, बात है। तो वो भी संगी पंचेंद्रिय है, जीव समाज की अपेक्षा जब हम देखते हैं तो पंचेंद्रिय जीव है, तो वो भी त्रस जीव है, मनुष्य गति के जीव है ना वे। और देवनार के कौन से होंगे? वे भी त्रस जीव है। यानी त्रस नाम कर्म के उदय से जीव त्रस पर्याय में जन्म लेता है, और उसके अगेंस्ट जो स्थावर नाम कर्म है तो पांच प्रकार के एकेंद्रियों को स्थावर कहते हैं। कौन से पांच है? हाँ, अग्निकायिक, वायुकायिक, जलकायिक, पृथ्वीकायिक, वनस्पतिकायिक। ये जो पांच अलग अलग जीव है उसको कहते हैं पांच स्थावर। तो स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव एकेंद्रीय पर्याय में जन्मता है। स्थावर इसलिए एक जगह रहता इसलिए स्थावर, और घूमता इसलिए त्रस, ऐसा नहीं है। क्योंकि वायु भी बहती है, जल बहता है, अग्नि ऊपर उसकी शिखाएं उठती है, तो वो एक जगह में रहता है स्थिर, इसलिए स्थावर, ऐसा उसका इसकी डेफिनेशन नहीं, उसकी परिभाषा ऐसी नहीं है। तो वहाँ त्रस नाम कर्म के उदय वाले त्रस जीव है, और जिनको स्थावर नाम कर्म का उदय है ऐसे वो स्थावर जीव कहलाते हैं। यानी ये जो स्थावर है वो एक इंद्रिय होते हैं, और त्रस है वो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के होते हैं। अब बादर और सूक्ष्म की बात। तो जो बादर नाम कर्म है उसके उदय में ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि जो दूसरे से रोका जाता है और जो स्वयं दूसरे को रोकता है। कोई ऐसे बादर शरीर है तो उसमें से दूसरा बादर शरीर ऐसे आर पार नहीं जा सकता, वो उसको रोकता है, प्रतिघात करता है उसको कहते हैं। जैसे हम भीम में से आर पार नहीं जा सकते। कोई पूछेगा वैकिरिक शरीर वाले तो जाते हैं, परंतु उनका वैसा सूक्ष्म परिणमन है, परंतु फिर भी वो है तो बादर जीव, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त बादर जीव है वे। परंतु वहाँ वैकिरिक शरीर ऐसा सूक्ष्म है परिणमन उसका, परंतु ये सूक्ष्म जीव वाले वो अलग होते हैं। सूक्ष्म बादर ये जो डिफरेंस है एक इंद्रियों में होता है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आगे वे सभी जो जीव है वो बादर ही होते हैं। हाँ, बादर ही कहलाएंगे, बादर जीव कहलाएंगे, क्योंकि वो बादर नाम कर्म का उनको उदय है। सूक्ष्म ये जो वैरायटी है वो एक इंद्रियों में ही दो प्रकार है, बाकी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय असंगी संगी वो सभी बादर जीव ही होते हैं। उसके अगेंस्ट जो सूक्ष्म नाम कर्म हमने देखा, तो उसके उदय में ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि दूसरे पदार्थों से वो रोका नहीं जाता, किसी में से भी आर पार चले जाए, लोहे के गोले में से चले जाए, मेरु पर्वत में से आर पार चले जाए। यानी वो ना आग से जलते हैं, ना पानी से गलते हैं, और वो पूरे लोकाकाश में खचोखच भरे हुए सूक्ष्म, और वो पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक वगैरह, यानी सूक्ष्म सभी जगह फैले हुए ना वो। हमें ऐसा लगता है कि अपने बीच में कुछ नहीं है, परंतु सूक्ष्म जीव पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए पूरे लोकाकाश। जितना एक महास्कंद का नाम सुना होगा आपने, महास्कंद वो काहे से बना है? तो जो हमने देखा ना पृथ्वी, साफ पृथ्वी होती है, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ये वह एक पृथ्वी, और नीचे और छह पृथ्वी जिसमें नरक है, ये तो सात पृथ्वी है, और आठवीं पृथ्वी उसका नाम क्या है? ईशत प्रागभार, ऊपर होती है लोकाकाश के ऊपर अग्रभाग में, और उसके बीचों बीच में सिद्धशिला नाम की शिला है, पत्थर 45 लाख योजन का, जिसके ऊपर वात वलय में सिद्ध भगवान विराजमान है। तो ये तो पृथ्वी, वो तो बादर पृथ्वी का एक जीवों का वो उसकी रचना है, उसके शरीरों की रचना, उसको पृथ्वी कहते हैं। उसके इन बिटवीन जो है वो सूक्ष्म पृथ्वी कायिकों की जो शरीर की जो स्कंद है पूरा, यानी सभी जो पृथ्वियां हैं उनके बीच में सूक्ष्म पृथ्वी से वो सब जुड़े हैं, और सर्वत्र फैले हुए हैं ये सूक्ष्म। तो ऐसे सूक्ष्म और बादर पृथ्वी कायों का मिलकर पूरा एक स्कंद लोकाकाश जितना बड़ा है उसको कहते हैं महास्कंद। पूरा पुद्गल का एक स्कंद है, ये पृथ्वी का एकांग का मिलकर होता है। हाँ, वो अन्य अन्य जीव वहाँ है ना, पृथ्वी तो रहती है, जीव मरकर निकल गया तो भी पृथ्वी तो वहीं पर रहती है। जैसे पृथ्वी कायिक में से पृथ्वी जीव निकल गया, पृथ्वी का रह गया, जैसे खदान में हीरा है, अब वो बाहर निकाला, उसमें से जीव निकल गया, मगर वो तो मैटर वहाँ है ना, पुद्गल वैसा है, वैसे पुद्गल एक जो पृथ्वी है वो तो रहती है। अभी हमने बादल और सूक्ष्म जीवों की बात की, इसकी चर्चा हम पहले करणानियोग परिचय पुस्तक में भी इसकी बहुत सारी चर्चा हुई। ये पृथ्वी का एक जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी काय अलग है, पृथ्वी जीव अलग है। देखो, कोई जीव मरकर पृथ्वी काय में जन्मने वाला है तो विग्रह गति में उसको हम पृथ्वी जीव कहेंगे। अभी उसने शरीर नहीं धारण किया, जब शरीर धारण करेगा तब हम उसको पृथ्वी कायिक जीव कहेंगे। अब वहां से जीव निकल गया और पृथ्वी रह गई तो उसको हम पृथ्वी कहेंगे। और एक सामान्य जिसमें तीनों ही भेद गर्भित है, ऐसे सामान्य पृथ्वी नाम का भी एक भेद आलाप उसमें आता है। ऐसे चार चार प्रकार शास्त्र में बताया है। तो ये जो पृथ्वी काय है, अभी जो हीरा पत्थर मानिक जो है वो क्या है? पृथ्वी काय है, डेड बॉडी है पृथ्वी काय की, यानी जिसको हम कलेवर कहते हैं। और हम क्या करते हैं, इस बॉडी पर उस बॉडी को लादते हैं और मानते हैं कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ये जो मादक सूक्ष्म की चर्चा भी हमने की, ये पर्याप्त और अपर्याप्त ये जोड़ी है। पर्याप्ति कहलाते कि शक्ति की पूर्णता। कौन सी शक्ति? कि जीव जब अन्यत्र कहीं से मरकर आता है तब पहले में पहले उसको पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति, ग्रहण करने का कार्य तो पूरा लाइफ टाइम तक चलेगा। उस जन्म के समय से लेकर मरण के समय तक शरीर के परमाणु जीव ग्रहण करता है, परंतु ये ग्रहण करने की शक्ति जो है वो डेवलप होने के लिए एक छोटा अंतर्मुहूर्त लगता है, उसको कहते हैं पर्याप्ति। पूर्ण होना उसको कहते हैं पर्याप्ति, शक्ति की पूर्णता होना वो पर्याप्ति है। ऐसे छह पर्याप्ति है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। यानी इसको हरेक को एक एक अंतर्मुहूर्त लगता है और सब मिलकर भी एक अंतर्मुहूर्त लगता है, बहुत छोटा होता है ये। अब जिसको एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उसके पहले ही जो मर जाता है उसको अपर्याप्त कहलाते हैं, उसको लब्धि अपर्याप्त कहते। यानी उनके तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, यानी उनकी लाइफ स्पैन ही इतनी छोटी होती है। और जिनको पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है उनके नियम से छहो पर्याप्ति पूरी होती ही है, उसके पहले उनका मरण होगा ही नहीं, ये नियम है। अब जिसको पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जब तक दो पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, बन रही ना अभी, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर बन रहे, अभी पूरा नहीं होता है, तब तक तो हम अधूरा कहेंगे। वैसे जब तक दो पर्याप्ति पूरी नहीं होती है पर्याप्त जीवों की, तब तक उसको ही निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। और शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उनको पर्याप्त कह देते हैं, जबकि छह पर्याप्ति पूरी होने पर ही वो एक्चुअली पर्याप्त हो जाता है। तो अपर्याप्त नाम कर्म का जिसको उदय है, हमने छड़ाला में पढ़े ना, एक श्वास में अठ दस बार, इतनी छोटी आयु होती है एक श्वास, यानी वो श्वास उच्छ्वास वाला श्वास नहीं है, जो नाड़ी के जो ठक और ठक ऐसे दो ठोके आते हैं ना, उसके बीच वाला जो अंतराल है, जो काल है, उसको श्वास कहते हैं। तो ऐसे एक श्वास में 18 बार जन्मे और मरे, इतनी छोटी लाइफ है। यानी एक लाइफ कितना है, तो श्वास के 18वें भाग जितना, उसको क्षुद्र भव भी कहते हैं। और ऐसा क्षुद्र भव किसी जीव को मिले, मान लो कोई अपर्याप्त अवस्था में चला गया, फिर अपर्याप्त नाम कर्म बांधना, फिर अपर्याप्त हुआ, फिर अपर्याप्त हुआ, मरकर फिर अपर्याप्त 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 होते गया, तो अधिक से अधिक एक अंतर्मुहूर्त में कितने भव हो गए उसके? तो 66,336 भव हो जाते एक अंतर्मुहूर्त में। तो एक अंतर्मुहूर्त में इतने भव, अभी तो कोई मनुष्य मर जाता है तो मरता है तो वो मरा कि नहीं मरा, वो अभी जिंदा है क्या, उसको चलो हॉस्पिटल ले जाए, उसको कुछ डॉक्टर से दवाई दे, डायग्नोस होते होते ही एक आध घंटा चला जाता है। और मान लो वो अपर्याप्त में चला जाए तो उसकी कितनी आयु हो जाएगी, कितने भोग, 66,336 भोग। उसमें भी कोई लगातार यानी एक इंद्रियों में जावे तो उसके तो उसमें 66,132 भोग है, कि दो इंद्रिय के 80 है, तीन इंद्रिय के 60 है, चतुर इंद्रिय के 40 है, पंच इंद्रियों के 24 है, उसमें भी असंग के 8, संगी के 8 और मनुष्यों के 8। क्योंकि ऐसी अपर्याप्त अवस्था देवों में नारकियों में नहीं होती, मनुष्यों में सम्मूर्छन मनुष्यों में भी इतनी अल्प आयु होती है। तो हमें जो ऐसा लगता है कि निगोद वाले जीव ही इतनी छोटी वाले आयु वाले, तो ऐसा नहीं है। यानी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक ऐसी अपर्याप्त अवस्था हो सकती है। तो ये पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के बारे में हो गया। अब ये जो प्रत्येक और साधारण है, ये शरीर के प्रकार है। यानी प्रत्येक शरीर जीव या प्रत्येक शरीर उसको कहते हैं जहाँ एक शरीर का स्वामी एक जीव है, और साधारण उसको कहते हैं, साधारण जीव कहते हैं या साधारण शरीर जीव कहते हैं। तो शरीर एक और उसके स्वामी अनंत जीव, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। यानी औदारिक शरीर एक और हरेक का अपना अपना कारमान और तेजस शरीर अलग। क्योंकि हम देखते हैं निगोद में से कोई, इसी को निगोद कहते हैं, जो साधारण नाम कर्म के उदय में, साधारण जीव कहो या निगोद जीव कहो एक ही बात है। तो उसके उदय में हम देखते हैं ना, निगोद में से कोई एक जीव निकल कर बाहर आता है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद में से, नित्य निगोद में से बाहर आते हैं। अन्य एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं या मनुष्य में जन्म लेते हैं या तीन इंचों में जन्म लेते हैं। देखो निगोद से लेकर तो जीव डायरेक्ट उसी भाव में मोक्ष भी जा सकता है। कोई पहचान वाले है आपको, आपके हा? निगोद में से निकले हुए कौन है? हाँ, भरत चक्रवर्ती के पुत्र। उन्होंने तो एक भाव हुआ था बीच में, परंतु अन्य भी अनेक जीव निगोद में से निकलकर उसी भाव में मोक्ष जा सकते हैं, और सूक्ष्म निगोद में से निकलकर मुनि तक हो सकते हैं। तो लोगों को ऐसा था, वहां कैसा भाव करते होगे तो ऐसी मनुष्य पर्याय मिले और ऐसा सब हो गया, ये तो सहज है। हमें क्या लगता है, हम सोच सोच कर शुभ भाव करते हैं और सोच सोच कर मोक्ष मार्ग में आते हैं। ये सोच सोच कर यानी सोचना, ये क्या है सोचना, यानी इच्छा करना। तो इच्छा करना ये तो राग की पर्याय हुई, चारित्र गुण का विभाव पर्याय हुआ। तो विभाव करने से मैं पहले मोक्ष मार्ग में जल्दी पहुंचूं, ऐसी बात है ही नहीं है, है ना। तो ये जो प्रत्येक और साधारण की बात चल रही थी अपनी, तो प्रत्येक शरीर में तो एक जीव और एक शरीर, साधारण में शरीर एक और जीव अनंत। जैसे आलू है, प्याज है, तो सुई के नोक के ऊपर जितना टुकड़ा आता है उसने टुकड़े में तो असंख्यात शरीर होते हैं, और एक एक शरीर में अनंत जीव। और कैसे अनंत, कि तीन काल में जितने सिद्ध होंगे उससे अनंत गुणा जीव, उसका अनंत भाग और अभिमान से अनंत गुणा, ये इतने जीव। तो कुछ गड़बड़ हुई, तीन काल के सिद्धों से जो अनंत गुणे इतने जीव एक निगोद शरीर में होते, एक निगोद शरीर में। और वो भी कैसे, समझो हम स्कूल में एडमिशन लेते ना, हर साल नई नई बैच आती है और 10वीं तक पढ़कर वो बैच चली जाती है आगे, उसमें से एक आध फेल भी हो सकता है, परंतु यहाँ वैसा नहीं है। एक समय में अनंत जीव वहाँ निगोद शरीर में जन्म लेते एक साथ, उनकी आयु सेम है, जो एक साथ जन्मे हैं वो एक साथ मरेंगे। दूसरे समय में दूसरा लौट आता है, यानी दूसरे समय में दूसरे अन्य अनंत जीव आते हैं, वो अपना समय पूरा करके अपने समय पर वे अनंत सब निकल जाएंगे उसी शरीर में। यानी शरीर एक और हर समय में नया नया लौट आता है और नए नए जन्मते हैं। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि अभी कुछ काल के लिए वहाँ कोई जीव ही नहीं है, यानी हमेशा उसमें अनंत अनंत जीव रहते ही। तो ये तो प्रत्येक और साधारण नाम कर्म। अब ये तो हमने 4 जोड़ी देखी, अब 6 जोड़ी रहेगी, दूसरी जोड़ी वाली 6 है। तो उसमें स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय और यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, ऐसे ही जोड़ी जोड़ी वाले हैं। अभी इसका एक एक काम स्वरूप देखते हैं, तो स्थिर और अस्थिर वो किसमें निमित्त है, तो शरीर में जो धातु होते हैं ना, ये सोना चांदी वाले नहीं, सप्त धातु जिसको कहते हैं, धातु और उपधातु, तो उन धातुओं का जो परिणमन है वो क्रमशः होता है। जैसे पहले वो पुद्गल परमाणु में से रस बनेगा, फिर रुधिर बनेगा, फिर उसमें से मांस में हड्डी मीजी वगैरह वगैरह, तो एक एक फॉर्म जब होता है तो उसमें वो सात सात दिन मान लो रहते, फिर सात दिन के बाद वो जो रस है वो रुधिर रूप होगा, रुधिर है वो मांस रूप होगा। तो इसके लिए अब जब अगले वाले में परिणमित होता है तो उसमें अस्थिर नाम कर्म निमित्त है। अब इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाए, ये डेफिनेशन पढ़ते। स्थिर नामकर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपनी अपनी जगह रहते हैं, यानी उनमें संतुलन रहता है, बिगाड़ नहीं होता है। धातु का अर्थ जो शरीर में सप्त धातु है उसकी बात यहाँ हो रही है, और वो किसमें होते हैं, मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर में, वैकृत शरीर में, और यानी देवों के और नारकियों के वैकृत शरीर में ये सप्त धातु नहीं होते, सप्त धातु रहित ऐसा उनका शरीर रहता है। एक इंद्रियों में है रस वगैरह होगा, उसमें रस होगा, उसमें वो शुक्र हड्डी बिड्डी ऐसी आगे वाले नहीं होते, उसमें होते हैं स्थिर अस्थिर दोनों होते हैं, वो तो यथा योग्य उनमें जो शरीर की रचना होती है उसमें वो ले लेना, स्थिर अस्थिर वो नाम कर्म होता है उनको भी। तो ये धातु इस प्रकार है कि रस रुधिर मांस मेद हड्डी मीजी और शुक्र, और जो उपधातु है वो वात पित्त श्लेष्म सिरा स्नायु चर्म और उदराग्नि। ये तो जो बताया जाता है ना, हमारी अपनी अपेक्षा से ये बताते स्थिर अस्थिर, अभी देवों में उसका यथा योग्य जो कुछ कार्य होता होगा, उसके नाम कर्म के उदय से रसादिक धातुओं का कितने ही काल तक अपने रूप से अवस्थान होता है, अगले अगले धातु रूप से नहीं बनते वो, और अस्थिर नाम कर्म के उदय में जो धातु रूप धातु है वो अपनी जगह स्थिर न रहकर चलायमान होते हैं, यानी रसादिक धातुओं का आगे की धातु रूप परिणमन होता है, रस है वो रुधिर रूप, रुधिर है वो मांस रूप, इस तरह से आगे आगे में उसका परिणमन होता है। अब जो शुभ नाम कर्म और अशुभ, ये जोड़ी ना शुभ अशुभ, तो शरीर के अवयव ऐसे होते हैं कि जिसको प्रशस्त कहते हैं, मनोज्ञ कहते हैं, दिखने में अच्छे, तो वो शुभ नाम कर्म के उदय में, और अशुभ नाम कर्म इसके अगेंस्ट कि ऐसे शरीर के अवयव बनते हैं कि वो दिखने में नहीं, जिसको कुरूप कहते हैं, अमनोज्ञ अरमणी कहते होते हैं। सुभग और दुर्भग ये जोड़ी है, तो सुभग नाम कर्म के उदय में क्या होता है कि अन्य लोग उस जीव से प्रीति करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा सुंदर दिखता है इसलिए प्रीति करते हैं, परंतु उसको देखकर ऐसा हम देखते हैं, कोई बालक ऐसे भले काले ऐसा कुछ है मगर देखते ही ऐसे मोहित करता है लोगों को, तो वहाँ सुभग नाम कर्म का उदय है। और दुर्भग में भले वो फीचर वाइज अच्छे है फिर भी लोग उससे प्रीति नहीं करते, वो दुर्भग नाम कर्म के उदय। देखे ना यहाँ रूपाधिक गुण संयुक्त होने पर भी अन्य लोग इससे अप्रीति करते हैं। अब सुस्वर और दुस्वर, तो सुस्वर नाम कर्म के उदय में मनोज्ञ ने सुरेल आवाज या शब्द उपजता है, ये लता मंगेशकर को जाके बताना चाहिए, ये जो आवाज है सुरेल है वो तो नाम कर्म के उदय में होने वाला कार्य है। हमने पहले देखा था ना आठों कर्म के उदय में क्या क्या बातें बनती है, तो ये तो सारे जो अवस्थाएं शरीर की बनती है वो तो नाम कर्म के उदय में होने वाली जो परमाणुओं की पुद्गल की अवस्थाएं हैं, और हमने आज तक उसे ही अपना स्वरूप मानकर हम बैठे हैं। ये तो कर्म के मेहमान है सब, और कर्म के उदय में जो जो अवस्थाएं होती है हमने आज तक यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरा आवाज ऐसा बिगड़ गया है, या ये मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, ये सब जो बातें बनती है ना, अभी हमने कितनी सारी देखी इसमें नाम कर्म के उदय में होने वाली बातें, संस्थान और सहनन वगैरह सब बातें देखी थी हमने, तो ये जो सारे है वो तो कर्म के उदय में होने वाली है, और उसमें जो मेरा अपनापन है, अभी जब हम इसको पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, जब इसका ज्ञान होता है, तो ये समझना आवश्यक है कि ये बातें जो कर्म के उदय में है, वो कर्म के खाते में हम रखेंगे, भले यहाँ पड़ी रहे। हमको ना शरीर को हटाना है, ना किसी कर्म के उदय को हटाना है, उससे हम भिन्न है, इसको पहचानना है। तो ये आदेय और अनादेय जो बात है, तो आदेय अनादेय में क्या है कि आदेय नाम कर्म के उदय में प्रभा अर्थात कांति सहित शरीर उपजता है, और भले काला हो मगर वो तेजपुंज होता है ना कभी, और अनादेय में कांति रहित शरीर उपजता है। अब दो ही रहेगी, यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति। तो यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय में अपने पुण्य रूप पवित्र गुण जग में प्रकट होते हैं, अर्थात यश होता है, और अयशस कीर्ति में उसके उल्टा कि भले अच्छा काम करे फिर भी जगत में अयश होता है। तो यशस कीर्ति का उदय तो एक इंद्रियों तक के होता है, यानी अपना बहुत यश हो गया तो कोई फूलने की जरूरत नहीं है, या अयश हुआ तो उसके लिए कोई, क्योंकि वर्तमान में हम कुछ कार्य करते हैं और उसका यश नहीं मिलता है तो उसके लिए कुछ, ये तो कर्म के उदय का फल चल रहा है और हम उससे भिन्न है, ये मूल में मूल जाननी बात। अब दो ही प्रकृति रह गई 93 में से बस कि निर्माण और तीर्थंकर। तो निर्माण नाम कर्म के उदय में शरीर के अवयव यथा योग्य उपजते, निर्माण नाम जैसा है ना उपजना, निर्मिति होना उसकी, तो अवयव यथा योग्य ने क्या कि उसमें दो प्रकार है, योग्य स्थान में और योग्य प्रमाण में। जैसे आंखें दो ही होगी और वो निश्चित सामने यहाँ फेस पर होगी, मनुष्य है तो उसकी आंखों की जगह निश्चित है, मछली है तो उसकी आंखों की जगह निश्चित है, मेंढक है तो उसकी आंखें ऐसे ऊपर के ऐसे ना अलग, उसके उसका शेप भी अलग होता है, उसकी प्लेस भी स्थान भी अलग होता है, तो उसको कहते स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। प्रमाण में संख्या, जैसे उंगलियां पांच है, किसी की छठी भी हो जाती है ना, अभी हाथ यहाँ से होता है, अभी किसी का तो ऐसे इतना पोर्शन ही नहीं है, जिसको हम एनोमली कहते हैं मेडिकल में, यानी मेल फॉर्मेशन, ऐसा कोई जन्मजात ऐसे कोई है, ऐसे बच्चे टिकते भी नहीं है, मर भी जाते जल्दी, यहाँ आंख है तीसरी, ऐसे भी बच्चे देखे हम, हमारे वो एनाटॉमी म्यूजियम में ऐसे रखे हुए होते, एक कैसे भी ऐसे अवयव बन जाते हैं। ये तो निर्माण नाम कर्म का वहां उदय जैसा कुछ होता हो, तो उसमें लिखा जाति नाम कर्म की सापेक्षता से, यानी जो जिस पर्याय में है उस पर्याय में जथा यथा योग्य जैसी, जहाँ जितने अवयव है और जिस प्रपोर्शन में और जिस स्थान में होना है वहां उसका निर्माण होता है, तो उसमें निर्माण नाम कर्म का उदय निमित्त होते हैं। और प्रमाण में जितने प्रमाण, यानी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या में उसकी निर्मिति होती है। अब ये जो तीर्थंकर नाम कर्म है, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में जीव तीर्थंकर बनता है। उदय कब होता है उसका याद है, 13वें गुणस्थान में, तो बंधेगा भले चौथे गुणस्थान के बाद कभी भी, परंतु उसके उदय में जीव तीर्थंकर बनता है। बंधने के बाद वो सत्ता में पड़ी रहती कोई भी कर्म प्रकृति, तो उससे जीव को कुछ लाभ नुकसान नहीं होता। ये तो इतनी महान में महान पुण्य प्रकृति कहलाती है, फिर भी पार्श्वनाथ मुनि अभी जिनके सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है और जो स्वयं तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे थे, उस समय भी उनके ऊपर घोर उपसर्ग चल रहा था। तो जब तक वो उदय रूप नहीं होती है तो किसी भी कर्म का कुछ भी फल नहीं मिलता। तो उसके उदय में क्या बातें बनती है, तो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, समोचरण की रचना होती है, और अन्य भी जो अनेक अतिशय है, जो तीर्थंकर के जो अतिशय है वो बनते हैं अलग अलग। अभी नाम कर्म की 93 प्रकृति का वर्णन पढ़कर तुम कौन सी प्रकृति बांधने का विचार कर रही हो, कुछ तो अच्छी होगी ना इसमें से, अन्य जाने दो, कम से कम तीर्थंकर प्रकृति तो बांधना योग्य है या नहीं, इस बात का निर्णय सर्वप्रथम होने चाहिए। भले कर्म प्रकृति बनती रहेगी यथा योग्य अपने भावों के अनुसार, परंतु पहले में पहले श्रद्धा में निर्णय में हमने ये बराबर जानना चाहिए कि कोई भी प्रकृति बांधने योग्य नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति बांधने योग्य मानेगा कोई भी, यानी उसने बंधन को अच्छा माना, बंधन को अच्छा माना तो उसके अभिप्राय में मोक्ष अच्छा नहीं है, यानी उसके अभिप्राय में सातों तत्वों संबंधी भूल चल रही है। तो इन प्रकृतियों के नाम मालूम न हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक बात निर्णय पूर्वक जानना आवश्यक है। किसी ने बताया इसलिए नहीं, हम स्वयं निर्णय करना चाहिए कि कोई संयोग अच्छे लगते हैं, शरीर की विशिष्ट रचना अच्छी लगती है, हाँ हमने अच्छा नाम कर्म बांधा था ना, इसलिए ऐसा हम उसका फल भोग रहे, यानी हम अच्छा, यानी वो उसमें अच्छेपन की जो भावना है अभिप्राय में, उसमें उसके प्रति संयोग के प्रति या शरीर के प्रति जो अच्छेपना का भाव है, क्योंकि हमने अच्छे बंध किया था इसलिए हम अच्छा पुण्य फल भोग रहे, तो उसके अभिप्राय में बंध को अच्छा मानता है वो। तो निर्णय पूर्वक जानना आवश्यक है कि कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है। किसी भी कर्म के फल में, उसके उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री में जिसे रुचि है, सुख बुद्धि है, मुझे वह उदय प्राप्त हो तो कितना अच्छा, ऐसी जिसकी बुद्धि है वह कर्म के बंधन को उपादेय मानता है, यानी बंधन को उसने करने जैसा माना है, यह उसकी मिथ्या बुद्धि है। बंध तत्व संबंधी तथा सातों ही तत्व संबंधी उसकी यह मिथ्या मान्यता है। अब ये जो नाम कर्म की जो हमने प्रकृतियां देखी, उसमें तो कुछ तो पाप रूप है और कुछ पुण्य रूप है, यानी पुण्य परिणामों से जिसको, शुभ भावों से यानी विशुद्ध परिणामों से प्रशस्त प्रकृति बनती है, और पाप परिणामों से जिसको संक्लेश परिणाम कहते हैं उससे अप्रशस्त कर्म प्रकृति बनती है। अब उसकी तो बात हम करेंगे बाद में करेंगे थोड़े। तो ये तो कर्म जो कौन सा द्रव्य है, छह द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य, तो ये जो पुद्गल द्रव्य है, परद्रव्य है, उसे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। हम शास्त्र में तो ऐसा निमित्त प्रधान कथन आता है कि अरिहंत भगवान ने कर्म का नाश किया, या हम अनादि से कर्म को बांधते आए हैं, हम अनादि से कर्म को भोगते आए हैं, हमको कर्म का नाश करना चाहिए, ये बातें आती है ना। परंतु अरिहंत भगवान भी कर्म की एक भी अवस्था को पलटा नहीं सकते, इसलिए प्रशस्त प्रकृति बांधना अपने बस की बात नहीं है, यह बात तो निश्चित हुई, सिद्ध हुई। क्योंकि प्रशस्त प्रशस्त प्रकृतियों के जब ना भेद देखते हैं और प्रशस्त प्रकृतियों का पुण्य फल मिलता है ऐसा जब सुनते हैं, तो ऐसा जीव को लगता है चलो मैं प्रशस्त प्रकृति बांधू। तो जब उसको कहते हैं प्रशस्त प्रकृति बांधना अपने हाथ की बात नहीं, क्योंकि वो तो पुद्गल है, पुद्गल में अपनी कुछ नहीं चलती, तो फिर प्रश्न क्या है जीव का, तुम पूछोगी जिन शुभ भावों से प्रशस्त प्रकृति बनती है वे शुभ भाव तो जीव के परिणाम है, उन्हें तो हम सोच समझ कर सकते हैं ना, वह तो हमारे बस की बात है ना। ये अनादिकालीन मिथ्या भ्रांति इसी में चलती है। देखो शरीर जुदा जीव जुदा सभी संप्रदाय के लोग कहते हैं, परंतु ये जो शुभ परिणाम मैं कर सकता हूँ वो करने योग्य है और उस करने से मेरा कुछ भला होगा, ये जो मान्यता जीव की है, उसमें जो एकत्व बुद्धि है ना, राख में एकत्व बुद्धि, वो इसकी छूटती नहीं है। इसलिए कर्म में अपना कुछ चलता नहीं सुनकर क्या कहते, अरे शुभ भाव तो हम कर सकते हैं ना, भले वो कर्म में जो होना है वो होगा। तो उसका उत्तर देखो, बेटियों हे जीवो, इसी मिथ्या मान्यता से अनादिकाल से यह जीव ग्रसित है। शरीर से जीव की भिन्नता को तो सभी संप्रदाय के लोग मान्य करते हैं, परंतु रागादि भावों से अपनी भिन्नता इस जीव के ख्याल में नहीं आती। विशिष्ट राग भाव करने योग्य मानना तो उसके आश्रय और बंध में उपादेय बुद्धि है, यानी भले वो कोई भी राग आवे उसकी बात नहीं है, परंतु मुझे विशिष्ट भाव करना चाहिए, ये चाहिए वाला जो जोर है ना। जैसे कोई कहते हमको सम्यक तो प्राप्त नहीं होता, तब तो शुभ भाव करना चाहिए ना, यानी जोर कहाँ आता है शुभ भाव करने पर, यानी जब ऐसा कहते चाहिए ना, यानी उसकी मान्यता में क्या है, कि मैं कर सकता हूँ। मान्यता में ऐसा ही है कि विशिष्ट भाव में सोच समझकर कर सकता हूँ, यानी मेरे इच्छा अनुसार मैं अपने भावों को पलटा सकता हूँ, ये उसकी मान्यता में पड़ा है। किसी को पूछा कि देव दर्शन पूजा करते समय वो अशुभ भाव क्यों आया, नहीं नहीं हम नहीं चाहते थे फिर भी आ गया। जैसे अशुभ को तो हम स्वीकार करते हैं कि वो तो अपने आप आ गया, वैसे शुभ को कभी हम तैयारी नहीं होती हमारी कि अपने आप आ गया है। जैसे हम सोच समझकर इच्छा करके पंचलब्धि का क्लास सुनने के लिए इतना सब छोड़कर आए ना देवलाली में, तो हमें क्या लगता है कि हमने इच्छा पूर्वक ये भाव किया है। देखो देखो आगे देखो, तो राग भाव करना मेरे हाथ की बात है, मैं चाहूं ऐसे विकार को पलटा सकता हूं या कर सकता हूं। मानने वाले ने जीव तत्व और आसव बंध तत्व को एक में एक माना है, यानी मैं तो जानने वाला भिन्न हूं और ये राग अपने योग्यता से यथा योग्य समय में आने योग्य वो आते हैं, ऐसा उसने नहीं माना। मैं करता हूं वैसे राग आता है, वैसे शुभ भाव आते हैं, ऐसे इस जीव ने माना है। सात तत्वों का सही स्वरूप एवं उनकी आपस में भिन्नता उसके ख्याल में नहीं आती। मुझे बताओ, पूजा करते समय, शास्त्र स्वाध्याय करते समय बीच में अन्य कोई विचार मन में क्यों आता है? हमारी इच्छा से तो वे विचार नहीं आते। जिस प्रकार अशुभ भाव हमारे किए बिना सहज उस पर्याय की योग्यता से हो जाता है, उसी प्रकार शुभ भाव भी सहज ही होता है। यह सहजता अज्ञानी जीव के ख्याल में नहीं आती और वह राग भाव का कर्ता बनता है। भले कोई उसको कहेंगे तो भी उसको तो कहे नहीं नहीं हमने किया तभी तो हुआ ना, यानी फिर भी वो अपना हट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ये सहजता उसके ख्याल में नहीं आती। प्रत्येक पर्याय सहज है, वैसे ये तो शुभाशुभ पर्याय भी सहज है। ये सहजता ख्याल में लेना है तो स्वयं को उसका कर्ता मानता है कि मैं शुभ भाव का कर्ता हूँ, मैंने किया तो हुए, ऐसे वो मानता है। ज्ञानी जीव रागादि से भिन्न अपना अस्तित्व जानता है। देखो राग तो आएगा, पहले जीव क्या करना चाहता है, राग को पलटना चाहता है, यानी मैं बच्चों पर प्रेम करता हूँ, मुझे समाज का ऐसे ऐसा कार्य करने में रस है, ये जो आदि बातें, तो मुझे वो पलटना चाहिए ना, अभी मुझे वो राग नहीं करना चाहिए ना, ऐसा प्रश्न उठता है, यानी वो राग को पलटाना चाहता है। तो मुझे बच्चों के प्रति राग है, प्रेम है, उसको पलटाना चाहता है, तो कैसे करना है? अभी अपने ही पर्याय में राग हो रहा है, उसको हमसे, ये जानने वाला कौन है? उसी समय मुझे बच्चों के प्रति प्रेम हुआ, प्रेम आता है, ये जानने वाला मैं हूँ। अपने ही पर्याय में जो राग चलता है उसका मैं ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ, परंतु हमने क्या माना, मैं उसको करने वाला हूँ और उसके उसको पलटाना है, तो हमारा लक्ष्य कहाँ गया? राग पर। तो हमें तो क्या करना है, उस समय मैं जानने वाला हूँ और मुझ में ऐसा अभी वर्तमान में राग आ रहा है और मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसे उस समय जानना है, बस राग को पलटाना नहीं। जब इसका अभ्यास बढ़ेगा, ज्ञान में ही मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला, ये राग को जानने वाला कौन है? मैं ही तुम, मेरे में जो क्रोध आता है, मान है, लोभ है, जो कोई परिणाम होता है उसका जानने वाला कौन है? मैं स्वयं हूँ। तो मैं तो जानने वाला हूँ और ये तो क्षणिक है, मेरे में होने वाला विभाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इस तरह से उसको जानना है। हम तो वो राग को ही पलटाना चाहते पहले में पहले, ये मूल मुद्दे की बात है। तो देखो, जीव ज्ञानी जीव को राग आएगा कि नहीं आएगा? ज्ञानी जीव को भी राग आता है। तो ज्ञानी जीव राग आदि से भिन्न अपना अस्तित्व जानता है। ज्ञानी के भी राग आदि होते हैं, फिर भी उनकी कर्ता बुद्धि उसे नहीं होती। वो तो जानते कि मेरे अभी कमजोरी से मुझ में ऐसा राग है, वो ज्ञान का ज्ञेय है उनके, करने जैसा नहीं मान रहे, आता है और उसके वे ज्ञाता है। जो ऑलरेडी आ चुका है उसका क्या नाश करना, वो समय मात्र की पर्याय है, वो तो अपने आप नष्ट होने वाली है। जब ज्ञायक में अपनापन बढ़ेगा तो आगे आने वाली जो राग की उत्पन्न होने वाली पर्याय उत्पन्न ही नहीं होगी, तब कहेंगे उसका नाश किया। ये उत्पन्न हुई और बाद में नाश किया, ऐसी कोई पर्याय है ही नहीं इस विश्व में। जो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, जो पर्याय है वो समय मात्र में है और फिर वो अगले समय में है ही नहीं, तो उसका क्या नाश करेंगे। तो अगले समय वाली पर्याय ज्ञायक को जानते हुए प्रकट होगी तो वो वितरागता वाली होगी, तब राग उत्पन्न नहीं होगा, उसको कहते हैं राग का नाश किया। देखो ज्ञानी के भी राग आदि होते हैं, फिर भी उनकी कर्ता बुद्धि उसे नहीं होती, वह उनका सहज ज्ञाता रहता है। अज्ञानी मानता है कि शुभ भाव तो करना ही चाहिए ना, उसके बिना धर्म कैसे प्रकट होगा, यानी ये शुभ भाव यानी राग से धर्म यानी वितरागता प्रकट होगी मानता है। राग करते करते वितरागता प्रकट होगी, ये ऐसा मानता है। राग होने की कोई यहाँ निषेध नहीं, राग भले हो जावे, परंतु राग की जो कर्ता बुद्धि मान रखी है, उस कर्ता बुद्धि उस अभिप्राय पर यहाँ चोट है। अज्ञानी जीव शास्त्र में पढ़ता है कि षोडश कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। वह सोचता है कि तीर्थंकर प्रकृति बांधना कितना अच्छा है, मैं भी तीर्थंकर प्रकृति बांधूंगा, परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। जिनेन्द्र भगवंतों ने बताया हुआ मोक्ष मार्ग सभी जीवों की समझ में आए इस तरह के तथा अन्य भी शुभ भाव ज्ञानी के सहज होते हैं और तब तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तीर्थंकर प्रकृति बनना शुरू हो गया तो वो तो कंटिन्यूस बनती रहती है। जिसने पहले नरकायु का बंध किया है, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ है, बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, और जो दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला है उसके अंतिम अंतर्मुहूर्त में मिथ्या तो एक अंतर्मुहूर्त के लिए आता है, और उस एक अंतर्मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। नरक में जाते शरीर पर्याप्ति पूरी होते फिर सम्यक को भी प्राप्त करेगा और तीर्थंकर प्रकृति भी बांधेगा, यानी ये तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यूस बांधेगा। कब तक? उस या तो उसी भव में मोक्ष जाएगा, या दूसरा भव देव का करेगा, या कोई नारकी का करेगा। तिर्यंच और मनुष्य का तो इमीडिएट नेक्स्ट नहीं करेगा, फिर देव से आएगा मनुष्य में और वो मनुष्य में तीर्थंकर होगा। तो उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध कितने भवन तक कंटिन्यूस चल रहा है, नींद में भी चल रहा है, ख्याल है ना। यानी वो तो कुछ सोच समझ कर नहीं कर रहा है, जैसे कोई व्यापार कर रहा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा है उसका, तो अन्य सांसारिक कार्यों में भी उसका बंध कंटिन्यूस चलता है। देव गति में गया वहां भी कंटिन्यूस चल रहा है, और फिर वहां से यहाँ आया फिर भी माता के पेट में भी गर्भ में भी उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा है, आठवें गुणस्थान तक बंधेगा। तो ये तो बंध हमेशा चल रहा है। तो हम सोच सोच कर, अभी वो सोच सोच कर कंटिन्यूस प्रत्येक समय में करता होगा कोई शुभ भाव, ये तो सहज होते हैं वैसे प्रकार के शुभ भाव, बुद्धिपूर्वक हो या अबुद्धिपूर्वक, अपने ज्ञान में आवे या नहीं आवे, वैसे उसके भाव चलते हैं और वैसा उसका बंध होता है। परंतु अज्ञानी इस बंध को अच्छा मानता है, शुभ भाव को करने जैसा मानता है, और ज्ञानी के शुभ भाव आते हैं परंतु वो कहते कि मैं कहाँ अटका हूँ, ये मेरी कमजोरी से आ रहे हैं, मान्यता में इनको भी छोड़कर मैं अपने में सदैव सदाकाल के लिए रह जाऊं, ऐसी उनकी अभिप्राय में चलता है। तो जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उन परिणामों को वह करने योग्य नहीं मानता, उपादेय नहीं मानता। कौन? ये ज्ञानी की बात चले, जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है वह ज्ञानी ऐसा नहीं मानता कि वो परिणाम अच्छे है, करने योग्य है। वो तो आते हैं शुभ भाव, उस प्रकार के शुभ भाव आ जाते हैं परंतु अंतरंग में स्थिर नहीं रहता, तब उसे वैसे भाव सहज आते हैं। सच देखा जाए तो एक बार वह बंधना प्रारंभ हो जाए तो आठवें गुणस्थान तक प्रति समय बनती है। कोई उसी भव में तीर्थंकर होता है तो कोई देव या नारकी का एक भव करके पश्चात तीर्थंकर होता है, यानी इस तरह से ये तो तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो सदैव, परंतु वो उसी को बंधेगी जो सम्यक दृष्टि है और जिसको विशिष्ट प्रकार का वो शुभ भाव है, यानी कोई जीव ऐसा सोच समझकर इच्छा पूर्वक तीर्थंकर प्रकृति बांधना चाहे तो बंध नहीं सकती, और ऐसी जिसको बंध की चाह है वो तो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता है ना। तो हमने ये इस प्रकार ये सब 93 नाम कर्म की प्रकृति देखी, ज्ञानावरण की 5 देखी, दर्शनावरण की 9 देखी, मोहनीय की 28, अंतराय की 5, ये घाती कर्म हुए। अघाती कर्म में वेदनीय की 2, आयु की 4, नाम कर्म की 93 और गोत्र कर्म की 2, इस तरह से अघाती कर्म की देखी हमने, यानी घाती कर्म की 47 और अघाती की कितनी हुई, 2, आयु की 4, 6, गोत्र की 2, 8 और 93, हाँ 101 और वो 47, 148 कर्म प्रकृति हुई। तो उसमें वो स्पर्श रस गंध वर्ण की जो 20 है ना, तो वो 20 के बदले हम अकेले स्पर्श रस गंध वर्ण इतने 4 ही अगर लेंगे तो वो तो 16 उसमें से माइनस करेंगे। और शरीर नाम कर्म, बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म एक ही नाम के है, वो 5, 5, 5, तो 5 ही नाम लेंगे तो उसमें वो 15 सब गर्भित होते हैं, तो 10 वो, तो 10 और ये 16, 26 माइनस करेंगे 48 में से तो 122 का भी हिसाब बताने में आता है। और उसमें भी जो बंधने वाली है वो 120 है, क्योंकि मोहनीय की जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है वो बनती नहीं है, बाद में बन जाती है मिथ्यात्व में से, तो बंधने वाली तो 120 है। इस तरह से हमने ये सब कर्मों की अलग अलग प्रकृतियां, उनके नाम और उसका कार्य देखा है, तो इन कार्यों से मैं भिन्न हूं ऐसा मुख्य जानना है। अब इसमें से जो प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृति है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करते हैं, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, 2-4 मिनट है। आपका कोई प्रश्न था ना बेन? हाँ, पेट का, हाँ नहीं, जैसे सिंह तो बाद में उगते हैं, हाँ, पर नाम कर्म का उदय तो पहले शुरू से ही होता है। नहीं, वो उसकी कह नहीं सकते क्योंकि वो बाद में हुआ है। उपघात नाम कर्म का उदय तो विग्रह गति के समय से ही होता है, वहीं से चालू वो नाम कर्म का उदय है। अब यथा योग्य जब वो शरीर की रचना बननी है वैसे बनेगी, परंतु उस जीव को वैसे नाम कर्म का उदय चलता रहता है हर समय, यानी परघात नाम कर्म का उदय की बात कर रहे हैं ना आप। शरीर में ऐसे अवयवों की उत्पत्ति, देखो आपका प्रश्न ऐसा है कि उपघात की बात चल रही है, उपघात नाम कर्म का उदय कब होता है? जन्म से ही होता है, वो जन्म से ही होता है उन जीवों में, जैसे अभी उन जीवों में वैसे ही अवयव बनते हैं, जैसे जहरीला फल है वो तो औरों के लिए परघात में लिया, परंतु उपघात में जो हमने लिया था नहीं, वो तो उसमें नहीं लेना, वो परघात उपघात में नहीं लेना उसको, उसके अन्य असाता वेदनी कर्म के उदय में उसको लेना, शरीर के जो रोग आदि जो होते हैं उसमें लेना उसको। हाँ, उपघात परघात नाम कर्म में ऐसे अवयव बनते हैं कि जो अपने या दूसरे के लिए घात में निमित्त हो, जैसे वाघ में तो ऐसी दाढ़ उत्पन्न होगी, सांप है उसमें ऐसे जहरीला उसका विष वहां होता है, वो काटने से मरता है जी, बिच्छू में ऐसे वो डंक में होता है विष। साधारण में अनंत जीव एक शरीर में, हाँ हाँ। देखो आपका प्रश्न ऐसा है कि साधारण जीवों का शरीर कितने काल तक टिका रहता है, क्योंकि अनंत जीव जन्मते और मरते निकल जाते फिर दूसरे अनंत आते हैं, तो उनकी मैक्सिमम स्थिति जिसको कहते हैं अधिक से अधिक रहने का काल, तो वो तो असंख्यात काल, असंख्यात वर्षों तक बने रहते हैं, असंख्यात वर्षों तक, हम बटाटा देखते ना, छह छह महीने तक ऐसा ही रहता है। छह महीने तक अनेक जीव आते हैं, मर जाते, पर नए नए आते, नए मर जाते, नए आते, वो तो ऐसा ही ऐसा फ्रेश दिखता है। हाँ, वैसे अभी जो ये तो बटाटा तो एग्जाम्पल हुआ, वैसे निगोद के ऐसे कोई शरीर है, वो तो असंख्यात वर्षों तक उसकी स्थिति बनी रहती है। पुद्गल परावर्तन कितने हैं, वो ढाई पुद्गल परावर्तन है ना। हाँ, बहुत लंबी स्थिति है उसकी, यानी अनेक सागरों तक उसकी स्थिति बनी रहती है। देखो, आलू को खाया, अभी पेट में उसका चूरण हो गया, तो वहां भी उसमें उत्पत्ति और मरण चलता रहता है। उसकी पर्याय बदली ना, पुद्गल तो है वहां, वो शरीर सूक्ष्म है, ये छोटे ना, उसकी अवगाहना छोटी है, उसके छोटे जो कण हो गए उसमें भी अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति वो बनी रहती है। यानी अपने पेट में उनका मरण, जन्म जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण चल रहा है। अपने पेट को कब्रिस्तान भी बना दिया और वो प्रसूति स्थान भी बना दिया। चलो, हम मिलते थोड़ी देर के बाद। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो रो।